الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد पिछले चंद दिनों से मशाइख के बताए हुए नुस्खे के बारे में गुफ्तगू हो रही है जो इस्लाह नफ्स का नुस्खा है और हर शेख जो है किसी न किसी दर्जे में इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करते हैं। और ये नुस्खा है चार चीजों में कमी करने वाला, किल्लत ताम, किल्लत कलाम, किल्लत इख्तिलात माल अनाम और किल्लत मना। और इन चारों पे गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है पिछले चंद दिनों से। इन चारों में से जो आखिरी टॉपिक है किल्लत मनाम, नींद में कमी करना, इस पे गुफ्तगू हो रही थी। इस हवाले से हमने ये कहा कि नींद ज्यादा करने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जो सोता तो वक्त पे है, इशा के एक दो घंटे बाद या इशा के फौरन बाद सो जाता है, मगर नींद ज्यादा होने की वजह से फजर के बाद आंख खुलती है, फजर कजा कर बैठता है। तो ऐसे बंदे को भी कहा जाएगा कि जी ज्यादा नींद कर रहा है और सही नहीं कर रहा। मगर एक इससे भी ज्यादा बड़ी गलती करने वाला है, और ये वो शख्स है जो रात को देर तक जागता है और फिर दिन भर सोता है और दिन का अक्सर बेशतर हिस्सा हिस्सा जो है वो नींद में गुजार देता है। तो जो दूसरी किस्म का गुनाह करने वाला है वो ना दीन में आगे बढ़ सकता है ना दुनिया के किसी काम का रहता है। इस किल्लत मनाम पे काफी गुफ्तगू हुई, और किल्लत मनाम का असल मकसद ये नहीं है कि इंसान बहुत ही थोड़ा सोए और फिर दिन भर जो है वो कभी इधर गिर रहा है और कभी उधर गिर रहा है, ऐसी हालत हो जाए। बल्कि जो मशायख ने किल्लत मनाम कहा है उसका बड़ा मकसद ये है कि अपनी नींद को डिसिप्लिन करे, जो नींद के औकात हैं उनमें सोए, और जो नेक लोगों के जागने के औकात हैं उसमें जागे। इसको किल्लत मनाम कहते हैं और उसके लिए कुर्बानी दे। कल की मजलिस में हमने इस किल्लत मनाम के बारे में अर्ज किया कि असल बुनियादी वजह रात को तहज्जुद फजर ना मिलने की ये मोहब्बत इलाही में कमी है। वरना जिसको मोहब्बत होती है वो महबूब के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता है। दुनिया के मोहब्बत करने वाले रातें साथ गुजारना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत करने वाले अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। इसी तरह जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो भी अल्लाह के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता है। अल्लाह के प्यारे महबूब को अल्लाह से मोहब्बत थी। आपका मुबारक फरमान है ली मा अल्लाह वक्तुन, मेरा और अल्लाह का एक अलग वक्त होता है। तो ये जो हम शिकायत करते हैं कि जी आंख लगी रही फजर में नहीं उठ पाया, ये मोहब्बत की कमी है। जब मोहब्बत दिल में आ जाती है तो फजर क्या तहज्जुद से उठा बैठा होता है, नफले भी पढ़ रहा है, दुआएं भी कर रहा है, इस इंतजार में है कि मौज़िन कब अजान देगा और मैं महबूब के घर में चल के जाऊंगा। मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, रहता हूं मस्त हो के तुम्हारे ख्याल में, तारों से पूछ लो मेरी रुदाद जिंदगी, रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल। मोहब्बत इलाही होती है तो फिर तहज्जुद में उठना मुश्किल नहीं होता, इससे भी ज्यादा मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। नाचे मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे, इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, अंग्रेजी अखबारों में लिखते थे। हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आ गए, औरत से बड़ा मोहब्बत का अकीदत का ताल्लुक हो गया, और फिर ये जज्बा मोहब्बत का इतना बढ़ गया कि आपने अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेजों के मजालिम के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। शेख उल हदीस बल्कि हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दारुलूम में उलमा के सामने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सर पे पगड़ी बांध दी। उलमा ने एतराज किया, गैर आलिम के सर पे इतने बड़े मदरसे में इतने लोगों के सामने पगड़ी। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो चीज जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई थी, ये जो नेक सोहबत है ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दे। अब ये मोहब्बत का जज्बा ऐसा कि आप इंग्लिस्तान चले गए। आपने कहा जब तक मुसलमान आजाद नहीं होंगे तब तक अंग्रेजी अखबारों में लिखता रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा। इसीलिए मोर्रखीन जितने हैं तहरीके आजादी में जहां बड़े बड़े नाम हैं वहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्ला अलैह का नाम है। अंग्रेजों ने धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी जान ले लेंगे, जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारा नाम नहीं बचेगा। तो इनकी इन धमकियों के सामने, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बातें करना आसान मगर मोहब्बत इलाही मुश्किल कामों को आसान कर देती है। चुनांचे अंग्रेजों की इन धमकियों के सामने आपने चंद अशार फरमाए। आपने फरमाया तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान वका मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, खुश हूं कि वो पैगाम कजा मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा, अक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो इन अशार से वो मोहब्बत इलाही टपकती है कि जिस मोहब्बत इलाही हासिल करने के बाद तहज्जुद में उठना तो एक छोटी सी बात रह जाती है, इंसान ना अपनी जान की फिक्र करता है अल्लाह पे अपनी जान भी कुर्बान करता है। तो रातों की नींद सेट नहीं हो रही वो इसलिए कि मोहब्बत इलाही की कमी है। और जो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करते हैं फिर ये दिल मोहब्बत इलाही से भर जाता है। चनाचे आपके हालात जिंदगी में लिखा है कि आप इंग्लिस्तान में थे और तहरीक आजादी में सरगरम थे, कि पीछे से खबर आई हिंदुस्तान से कि नौजवान बेटी जो है वो किसी मर्ज में मुब्तिला है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो बेटी ने वालदा से कहा कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मेरे दिन थोड़े हैं, मैंने इस दुनिया से चले जाना है। والد جو ہے وہ انگلستان میں ہے، بس چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے والد کو دیکھ لوں. اللہ، والدہ نے کہا کہ تیرا والد جس حال میں ہے، میں کہوں گی تو شاید نہ آئے، تو خود خط لکھ. تو نوجوان بیٹی نے خط لکھا کہ ابا حضور، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آخری دن ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتی. اب سوچیں اس والد کی حالت کو کہ جو اتنا دور بیٹھا ہے اور وہاں جوان بیٹی کا یہ خط آئے. یہ وہ زمانے تھے جب ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے، انگلستان سے یہاں آنا کئی مہینوں کا سفر تھا. آپ نے اس خط کے پیچھے دو شعر لکھے بیٹی کے لیے، اور عجیب تاریخی شعر لکھے. فرماتے ہیں، ہم تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں. ہم تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں. تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں. تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. اللہ اکبر. محبت الہی ہے تو انسان سے مشکل کام کروا لیتی ہے. اسی لیے جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ہمیں راتوں کی عبادت کے لیے قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.